नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 27 मार्च 2020 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, कोविड-19 से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पेश की $2 अरब की मानवीय राहत योजना। विश्व में गहराते संकट के बीच G20 समूह की बैठक में एकजुट कार्रवाई का आह्वान। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों की अहम भूमिका, सुनिएगा एक खास बातचीत। 1944 के बाद पहली बार ओलंपिक खेलों को स्थगित करने का फैसला। जलवायु संकट पर पार पाने में जल की हर बूंद को सहेजा जाना जरूरी। और घातक संक्रामक बीमारी TB की रोकथाम और इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए UN न्यूज रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोविड-19 की अभूतपूर्व चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक मानवीय राहत अपील जारी की है। इस मुहिम के जरिए कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं वाले देशों की सहायता सुनिश्चित करने और लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्वव्यापी महामारी से एहतियाती उपायों के मद्देनजर कई देशों में तालाबंदी लागू है, जिससे करीब 3 अरब लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। UN एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन प्रेस वार्ता में महासचिव गुटेरेश ने कहा,
Today we are launching a $2 billion global humanitarian response plan to fund the fight against COVID-19 in the world's poorest countries, coordinated by the UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
दुनिया के निर्धनतम देशों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए आज हम $2 अरब की वैश्विक मानवीय राहत योजना को पेश कर रहे हैं। इस अंतर एजेंसी योजना की तैयारी मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए UN कार्यालय की ओर से की गई है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और UN के अन्य साझेदार संगठनों की अपीलों को शामिल करने के अलावा नई जरूरतों की भी शिनाख्त की गई है। महासचिव ने कहा कि इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती है तो उससे कई जिंदगियों को बचाने में सफलता मिलेगी। साथ ही टेस्ट किटों की व्यवस्था करने, बीमारों की देखभाल करने और स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा करने के लिए निजी बचाव सामग्री को जुटाना भी संभव होगा। कोरोना वायरस अब दुनिया के उन इलाकों में भी दस्तक दे रहा है जो हिंसक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में गहराते संकट के मद्देनजर G20 समूह के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया। इस बैठक में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने एकजुटता और सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की पुकार लगाई है। इस कार्रवाई में व्यक्तियों वे व्यवसायों तक सीधे वित्तीय मदद पहुंचाए जाने, नकदी उपलब्ध कराए जाने और प्रभावित देशों में सामाजिक और आर्थिक समर्थन मुहैया कराए जाने को अहम बताया गया है। इस बीच कोविड-19 के असर के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए किस तरह के उपाय किए गए हैं? UN के 4 प्रमुख अंगों के प्रमुख, महासभा अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद अध्यक्ष, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अध्यक्ष और महासचिव सदस्य देशों और अन्य पक्षकारों को शुक्रवार को इसी सिलसिले में अवगत करा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दुनिया भर में किसी भी स्थान पर जारी संघर्ष या युद्ध में शामिल पक्षों से अपील की है कि वो अपने हथियार डाल दें, ताकि विश्व के सामने दरपेश एक ज्यादा बड़ी चुनौती कोविड-19 का मुकाबला करने में उनका सहयोग काम आ सके। सोमवार को जारी इस अपील में उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक ऐसा दुश्मन है जिसने पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। एक रिपोर्ट के साथ UN हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
UN प्रमुख ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि कोविड-19 को किसी राष्ट्रीयता या नस्लीय पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है या फिर लोगों के बीच किसी भी अन्य तरह के अंतर का। ये वायरस सभी को बिना किसी भेदभाव के निशाना बनाता है, यहाँ तक कि युद्धकाल में भी किसी को नहीं बख्शता। महासचिव ने कहा,
The fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives.
महासचिव अंतोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि इस वायरस की भीषणता ने युद्ध की बेवकूफी को बेमानी बना दिया है, इसलिए मैं दुनिया के सभी स्थानों पर तत्काल रूप से वैश्विक युद्ध विराम का आह्वान करता हूं। अब समय है कि सशस्त्र संघर्ष को ताले में बंद कर दिया जाए और सभी को अपने जीवन की सबसे असल लड़ाई पर एकजुट होकर ध्यान केंद्रित किया जाए। युद्धरत पक्ष अदावत व लड़ाई छोड़ दें, अविश्वास और दुश्मनी को दरकिनार करते हुए बंदूकें शांत कर दें, गोलाबारी रोक दें और हवाई हमले भी बंद कर दें। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। युद्ध विराम होने से मानवीय सहायता कर्मियों को ऐसी आबादी के पास जरूरी सहायता पहुंचाने का मौका मिल सकेगा जो कोविड 19 फैलने के कारण मुसीबत में फंस गई है। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि किसी भी तरह के संघर्ष या युद्ध में सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करने वालों में महिलाएं, बच्चे, विकलांग लोग, हाशिए पर रहने वाले लोग, विस्थापित और शरणार्थी ज्यादा होते हैं, और यही आबादी ऐसी है जो कोविड 19 महामारी के सबसे ज्यादा भीषण प्रभाव का सामना करने को मजबूर है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि युद्धग्रस्त स्थानों व देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पहले ही पूरी तरह तबाह होने के नजदीक पहुंच चुका है। जहां जहां कुछ स्वास्थ्य कर्मी मौजूद भी हैं, उन्हें वहां युद्धक गतिविधियों का निशाना बनाया जाता है।
भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन ने देश में 21 दिन की देशव्यापी तालाबंदी की रणनीति का स्वागत करते हुए भरोसा जताया है कि इससे कोविड 19 की रोकथाम में मदद मिलेगी। दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
देश में तालाबंदी के प्रधानमंत्री के कदम का स्वागत करते हुए भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन ने कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली पूरी तरह काम में लगी है और कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में भारत सरकार को अधिक से अधिक समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम अपने जीवन काल के इस सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे को दूर कर सकते हैं। उधर भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे घनी आबादी वाले देश भारत में जिस तरह कोविड 19 की रोकथाम के लिए लोग स्वेच्छा से तालाबंदी का पालन कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन इसके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दूरगामी प्रभाव होंगे। भारत में यूएनएफपीए की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अर्जेंटीना माधवेल पिक्किन ने बताया,
भारत चिकित्सा उपकरणों का एक बड़ा उत्पादक है। मैं कहती हूँ भगवान का शुक्र है, क्योंकि इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, भारत परीक्षण किट के उत्पादन में व्यस्त है, लेकिन 1,30,00,000,000 की आबादी के लिए इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करना संभव नहीं होगा।
भारत में यूएनएफपीए की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अर्जेंटीना माताबेल पिकिन के शब्द। भारत में चिंता गहरा रही है कि अगर देश में व्यापक स्तर पर संक्रमण फैलता है तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात कार्यक्रमों के निदेशक माइक रायन ने महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,
भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। इस विश्वव्यापी महामारी का भविष्य घनी आबादी वाले देशों में हालात से तय होगा, इसलिए इस बीमारी पर काबू पाने, उसे दूर करने और जिंदगियां बचाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज के स्तर पर भारत द्वारा तेज कार्रवाई लगातार करते रहना महत्वपूर्ण है। भारत ने लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए दो बड़ी घातक बीमारियों, चेचक और पोलियो के उन्मूलन में बड़ी सफलता हासिल की है, और ये भरोसा दिलाता है कि भारत सहित दुनिया के अन्य देश तेज और निरंतर कार्रवाई के जरिए इस चुनौती का सामना कर सकते हैं।
जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात कार्यक्रमों के निदेशक माइक रायन के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर हैंक बैकेडम का मानना है कि भारत ने कोविड 19 के खिलाफ व्यापक, मजबूत और समय रहते कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार का पूरा रुख उच्च स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन कदमों से संक्रमण के चक्र को तोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। उन्होंने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साझेदारों के साथ मिलकर कोविड 19 के लिए तैयारियों और रोकथाम के उपायों पर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।
और जमीनी हालात पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने ही बात की संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में मध्य प्रदेश के लिए स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीलेश देश पांडे से।
कोविड 19 की रोकथाम के लिए भारत में पूर्ण तालाबंदी घोषित कर दी गई है। इस वक्त देखें तो समय की मांग यही थी, लेकिन क्या लगता है दुनिया की सबसे बड़ी घनी आबादी वाले देश भारत के लिए इसके क्या मायने हैं आपके हिसाब से?
लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमने लिया है, पर ये अपने आप में सिर्फ काफी नहीं है और ये पूरी तरह से बीमारी को रोक भी नहीं सकता या मिटा भी नहीं सकता। इसके साथ साथ हम सबको, भारत सरकार को, जो हम कदम ले रहे हैं जैसे कि अभी टेस्टिंग की फैसिलिटी को बढ़ाना है या हर जो व्यक्ति है जिसमें कोई लक्षण नजर आ रहे हैं उस हर व्यक्ति की हमको टेस्ट करने की अपनी तैयारी करनी है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करना है। मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन एक अच्छा विंडो अपॉर्चुनिटी है कि हम ये संक्रमण को रोकने की में कमी ला रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने का समय दे रहे हैं।
लेकिन भारत की जैसे ज्यादातर आबादी गांव में रहती है तो स्थिति में उनकी जिंदगी और उनके जीवन यापन पर क्या असर पड़ रहा है?
लगभग 70% हमारी आबादी गाँव में रहती है, यानी अगर आप देखेंगे गाँव से हमारा माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। काफी लोग शहर की तरफ जाते हैं, शहर से या फिर किसी अन्य राज्य में काम की तलाश में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लोग बाहर गए थे वो शहर से या दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं। जो अभी तक देखा जाए तो अर्बन फिनोमिना की तरह हम इसको देख रहे थे और सारे केसेस अब तक मोस्टली अर्बन सिटीज और उस एरिया से निकल रही थी। तो जब अब ये लोग वापस गाँव में आ रहे हैं तो गांव वालों के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए अब एक खतरा बन हुआ है कि कहीं जो बीमारी अब तक ग्रामीण क्षेत्र में तक नहीं पहुंची थी हो सकता है वो अब वहां तक पहुंचे। और दूसरी चुनौती होगी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं है हम उनको कैसे तैयार करें ताकि वो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनको सही सेवाएं दे सके, वहाँ उनकी टेस्टिंग कर सके या वहाँ पे ही उन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। हमारे फ्रंटलाइन फंक्शनरीज है, आशाज है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो उनके माध्यम से हम कैसे लोगों तक सही जानकारी पहुँचाए।
तो आप मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ पर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो हमें दिल्ली की और आसपास की खबरें मिल रही हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश में या वहाँ पर जो दूर दराज के वहाँ इलाके हैं वहाँ पर किस तरह काम चल रहा है, किस तरह जागरूकता फैलाने में यूएनएफपीए काम कर रहा है?
हम जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ आज की तारीख में जब लॉकडाउन हो रखा है तो आपको इन पर्सन ट्रेनिंग या जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से गांव के हर वो कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोरोना कोविड-19 क्या है, कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए, क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए, अगर कोई उनके यहाँ से बाहर से आया है तो कैसे उसके बारे में जानकारी आगे पहुंचानी है। साथ ही साथ काफी सारा IAC मटेरियल या सिंपल वीडियोज बनाए जा रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स बनाई जा रही है जो सरकार के एंडोर्समेंट या अप्रूवल के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की जा रही है कि हर गांव तक हम पहुंचे, सही जानकारी के साथ पहुंचे।
इस कोविड 19 ना फैले और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है और किस तरह की चुनौतियां भी हमें सामने आ सकती हैं आगे जाके?
जैसे जैसे बीमारी फैल रही है ज्यादा उसके बारे में जानकारियां मिल रही है, बट अगर हम भारत या भारत के विस्तृत और हमारी आबादी को देखेंगे वाकई में चुनौतियां बहुत सारी है और सरकारें पूरी तरह से प्रयासरत भी है और वाकई में इस बार जिस हिसाब से अवेयरनेस या रेडीनेस है वो काबिले तारीफ है। बट आगे चल के अगर आप देखेंगे अभी तक हमारे जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज थी हमने अभी तक लगभग 25,000 टेस्ट किए है, जो अगर हमारी आबादी को देखेंगे तो आगे चल के हमको इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। और उसी राह में अगर आप देखते हैं तो ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी अभी जो पहले बड़ी सीमित लैबोरेटरीज थी बट आज उनकी संख्या बढ़ के 114 हुई है और उसमें कुछ प्राइवेट लैबोरेटरीज को भी जोड़ा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं रिसेंट एक अच्छा डेवलपमेंट जो मैं वाकई में शेयर करना चाहूंगा, जो इंडिया ने अपना खुद का टेस्टिंग किट अप्रूव कर लिया है और उसके प्रोडक्शन की अनुमति दी है, तो आने वाले समय में उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट करें और उन तक पहुंच बनाएं।
उधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने इस वर्ष जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों को स्थगित करने की घोषणा की है। विश्व के कई देशों में तेजी से फैलती महामारी कोविड-19 से गहराती चिंता और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। वर्ष 1944 के बाद ये पहला मौका होगा जब ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के साझेदार संगठन IOC और टोक्यो 2020 आयोजन समिति द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में इस निर्णय की घोषणा की गई है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने हाल के दिनों में चेतावनी जारी की थी कि वायरस के फैलने की रफ्तार तेज हो रही है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहले ही टोक्यो ओलंपिक्स में अपने एथलीटों को ना भेजने की घोषणा कर चुके थे और अन्य देशों ने भी कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए खेलों को स्थगित किए जाने की सीधे तौर पर अपील की थी। ओलंपिक खेलों को अगले साल की गर्मियों से पहले कराए जाने की बात कही गई है। बाढ़, भारी बारिश, सूखा और पिघलते ग्लेशियर। जलवायु परिवर्तन के कई बड़े संकेत स्पष्ट रूप से जल पर आधारित हैं। इस वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर UN की मौसम विज्ञान एजेंसी ने जल और जलवायु के आपसी संबंध को रेखांकित किया है। एक रिपोर्ट के साथ महबूब खान।
महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने इस दिवस पर अपने संदेश में कहा कि जलवायु और जल में अटूट संबंध है। 21वीं सदी की सबसे मूल्यवान चीजों में जल शामिल है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन और पनबिजली सेवाएं इस मंत्र के साथ हमारे प्रयासों के मूल में होंगी कि हर बूंद की गिनती कीजिए, हर बूंद अहम है। मौसम के बदलते मिजाज से उसका पूर्वानुमान लगा पाना कठिन होता जा रहा है, जिसके कारण जल संसाधनों और उनकी उपलब्धता पर दबाव बढ़ेगा। इससे टिकाऊ विकास और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। अप्रत्याशित मौसम के प्रभावों पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की नई रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का भारी असर हो रहा है, साथ ही विश्व आबादी का स्वास्थ्य और रहन सहन भी प्रभावित हुआ है। वर्ष 2019 में दुनिया के कई हिस्सों में चरम मौसम की घटनाएं व्यापकता और स्तर के नजरिए से अभूतपूर्व थीं। भारत में लोगों को मानसून के दौरान भारी बारिश व जानमाल को क्षति पहुंचाने वाली बाढ़ का सामना करना पड़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सबसे शुष्क साल साबित हुआ। मोजाम्बिक में और अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान इराई से व्यापक पैमाने पर तबाही देखी गई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इन घटनाओं की आवृत्ति और उनसे होने वाली तबाही के मद्देनजर जल पूर्वानुमान, निगरानी और आपूर्ति प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका लक्ष्य TB संक्रमितों को बीमार होने से बचाने के लिए रोकथाम और इलाज जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है। TB दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारी है और हर दिन इसके कारण 4000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ज्यादा जानकारी महबूब खान से।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व आबादी का एक चौथाई हिस्सा टीबी से संक्रमित है। लक्षण न दिखाई देने के बावजूद टीबी से संक्रमित लोगों में बीमारी के गंभीर रूप धारण करने का जोखिम रहता है, विशेषकर उन लोगों में जिनका रोग प्रतिरोधी तंत्र पहले से ही कमजोर है। UN एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसस ने इस दिवस पर अपने संदेश में कहा कि कोविड-19 दिखा रहा है कि फेफड़ों की बीमारी और कमजोर रोग प्रतिरोधक तंत्र वाले लोगों के लिए कितना ज्यादा जोखिम है। दुनिया वर्ष 2030 तक टीबी का अंत करने के लिए संकल्पित है और इसे संभव बनाने में रोकथाम के उपायों को बेहतर बनाना अहम है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के नए दिशा निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य टीबी से संक्रमित लोगों के लिए रोकथाम के उपायों को तेजी से लागू करने में देशों की मदद करना है। रोकथाम उपायों के जरिए टीबी संक्रमितों को बीमार होने से बचाया जा सकता है और इससे टीबी के फैलाव का जोखिम भी कम होता है। वर्ष 2018 में टीबी पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में कुछ प्रगति की जानकारी दी गई थी, लेकिन टीबी की रोकथाम के लिए उपचार फिलहाल अपर्याप्त ही साबित हुए हैं। UN एजेंसी की नई सलाह में कहा गया है कि बीमारी का ज्यादा जोखिम झेल रहे HIV संक्रमित मरीजों और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।